प्रिय श्रोताओ नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पत्रस की पहली पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है दुखों के मध्य आशा। श्रोताओ, हमें उम्मीद है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो चलिए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हो प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रियों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पहला पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि पत्रस कहता है कि आपको जो वरदान मिला है उसे परमेश्वर के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाना है, क्योंकि सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होनी आवश्यक है। तब हमने यह भी देखा, यदि विश्वासियों पर दुख आए तो वह अनहोनी बात नहीं है, आनंद मनाना है। मसीह के नाम के लिए निंदा के पात्र बने तो स्वयं को धन्य मानना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम पर छाया करता है। धर्मी जन की कठिनाई से उद्धार प्राप्त है तो भक्तहीन और पापी का क्या ठिकाना। हमने इन्हीं विषयों का अध्ययन किया था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है, ताकि प्रभु हम इस पृथ्वी पर जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं। यह इसलिए नहीं कि हम अच्छे और भले लोग हैं, परंतु इसलिए कि आपका अनुग्रह, आपका दया हम में से हर एक के जीवन में है। पिता परमेश्वर, आज जब हम फिर से आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय आपके वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं, आप उनके मन और दिल को तैयार करें, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दें, समझ दें, ताकि आपका वचन उनके कानों से होकर हृदय तक पहुंचने पाए और व्यवहारिक रूप में आने पाए। पिताजी, हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, किसी न किसी परिस्थिति में हैं जो उनके जीवन को कष्ट पहुंचाती है। आप उन्हें सामर्थ्य दे, धैर्य दे, चंगाई और छुटकारा दे, ताकि प्रभु प्रत्येक का जीवन आपको धन्य कहने पाए। आज के अध्ययन के द्वारा आप हमें सिखाएं, समझाएं और आप अपनी महिमा लें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए पहला पत्रस की पत्री 4 अध्याय उसके 18 पद से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। 4 अध्याय उसके 18 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तहीन और पापी का क्या ठिकाना। दूसरे शब्दों में हम विश्वासी बाल बाल बचे, केवल प्रभु यीशु की मृत्यु और उसमें विश्वास के द्वारा धर्मी जन उद्धार पाते हैं। मेरे मित्रों, हमारा उद्धार ऐसे ही होता है। अपने स्वास्थ्य लाभ की छुट्टियों में मेरी पत्नी और मैं पिछले जीवन पर ध्यान कर रहे थे और हमने नए क्षेत्रों में एक दूसरे को जाना। मैंने अपनी पत्नी से व्यंग किया, ओह मैं तो अब जाकर तुझे समझ पाया हूं, तो क्यों ना हम फिर से विवाह कर लें। मैंने उसे यह भी बताया कि जब जब मैंने गलत कदम उठाया तब तब परमेश्वर ने मुझे बचाया है। मैं वास्तव में अचंभा करता हूं कि मैं बाल बाल बच गया। मेरे प्रियो, जॉन वेस्ली जो एक परमेश्वर का महान दास है अपने आप को उद्धार प्राप्त पापी कहता है। यह हम सबके बारे में सच है। जब जॉन वेस्ली अमेरिका आए थे तब वह उद्धार प्राप्त मनुष्य नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं अमेरिका आया था कि आदिवासियों के बीच में मन फिराव का कार्य करूं, परंतु जॉन वेस्ली का मन फिराव कौन करवाएगा। उनकी जीवनी का लिखने वाला बताता है कि वहां बर्तानिया से भेजा गया एक व्यवस्थापक था। वह अत्यधिक धनवान था, उसकी एक सुंदर युवा पत्नी थी। जॉन वेस्ली उसके प्रेम जाल में फंस गए। उन्होंने कहा कि वह तलाक लेकर उनके साथ आदिवासियों में सेवा करने उनके साथ हो ले। वह एक विश्वसनीय एवं परमेश्वर की सेविका थी। उसने उन्हें इंग्लैंड भेजा और कहा, जॉन मैं आपसे प्रेम करती हूं और सदा करती रहूंगी, परंतु परमेश्वर ने आपको उसके लिए कुछ करने को बुलाया है। वह एक विश्वासी थी और उसने जॉन वेस्ली को इंग्लैंड भेज दिया। कहा जाता है कि 3 बार वह जहाज में गई और 3 बार लौट आई, परंतु वह जॉन को इंग्लैंड भेजकर ही मानी। एक दिन उन्होंने चौराहे पर किसी प्रचारक को गलातियों की पत्री से प्रचार करते हुए सुना। वह कहते हैं, मेरे मन में एक अद्वितीय उत्साह भर गया और मुझे ऐसा लगा कि मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, केवल प्रभु यीशु पर अपने उद्धार के लिए, और मुझे आश्वासन दिया गया कि प्रभु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए हैं। अब यदि धर्मी जन ही कठिनाई से उद्धार पाते हैं तो भक्तहीन और पापी का क्या ठिकाना। मेरे मित्रों, यदि आप मसीह यीशु में विश्वास नहीं करते तो आप कैसे पार लगेंगे। केवल एक ही आशा है, उद्धार का एक ही मार्ग है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। जी हां, सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा ही आप उद्धार प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर के निकटता में आ सकते हैं। पत्रस आगे कहता है, पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 19 पद में, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। ध्यान दीजिए, जिन्होंने कष्ट उठाया है वे जानते हैं कि अपने आप को प्रभु के हाथों में छोड़ देना कैसा महान अनुभव होता है। दूसरा तिमुथियुस की पत्री 1 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस अपने अनुभव को व्यक्त करता है, कहता है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। पौलुस की धरोहर क्या थी? कुछ विचारकों का मानना है कि उसकी धरोहर परमेश्वर का सुसमाचार था। मेरे प्रियो, मैं उनकी बात मानता हूं, परंतु इससे भी गहरा अर्थ यह है कि पौलुस ने अपना सर्वस्व प्रभु के हाथों में छोड़ दिया था। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 1-6 पद में पौलुस अपनी 8 लाभ का उल्लेख करते हुए कहता है, पद 7-8 में कहता है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। क्यों? मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। मेरे प्रियो, उसके कहने का अर्थ है, अब मैं उनमें विश्वास नहीं करता, मैं केवल मसीह यीशु में विश्वास करता हूं। तब पत्रस कहता है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार को सौंप देते हैं। क्या आपने सच में प्रभु में विश्वास किया है? मेरे प्रियो, हम अपना माल यानी कि खजाना तिजोरी में रखने के बाद निश्चिंत होकर के सो जाते हैं। मेरे प्रियो, कल रात मैं निश्चिंत सो रहा था, मुझे अपने प्राण की चिंता नहीं थी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मेरा रखवाला है, मैंने अपनी धरोहर उसके हाथों में सौंप दी है, मैं उसमें विश्वास करता हूं। क्या आपने उसके पास अपनी धरोहर रख दी है? क्या आपने अपने प्राण उसके हाथों में सौंप दिए हैं? यदि आपने ऐसा कर दिया है तो कैसी भी समस्या क्यों ना हो, कैसा भी अंधकार छा क्यों ना जाए, आपको कैसी भी घाटी में चलना क्यों ना पड़े, तो आप निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वह आपकी सुधि लेगा। परमेश्वर ने सतत नीले आकाश की प्रतिज्ञा नहीं की है, संपूर्ण जीवल फूल की सेज नहीं सजाई है, परमेश्वर ने वर्षा रहित सूर्य की प्रतिज्ञा नहीं की है, दुख बिना आनंद, कष्ट बिना शांति, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा नहीं की कि हम परिश्रम, परीक्षा, कष्ट एवं हाय ना सहें। उसने नहीं कहा कि हम बोझ और चिंता मुक्त रहेंगे। परमेश्वर ने समतल मार्ग, चौड़ा, आसान, अगुवाई रहित यात्रा, चट्टानी और ढलुआ पहाड़, उबलती गहरी नदी की प्रतिज्ञा नहीं की। परमेश्वर ने दिन भर की शक्ति, श्रमिक को विश्राम, मार्ग की ज्योति, परीक्षाओं में अनुग्रह, स्वार्गिक सहायता, अचूक सहानुभूति, अनंत प्रेम की प्रतिज्ञा की है। क्या आपने अपनी धरोहर, अपनी आत्मा उसके हाथ में सौंप दी है? मेरे प्रियो, हमारे लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपनी आत्मा किसको सौंपते हैं, अपना जीवन किसको सौंपते हैं, परमेश्वर को या शैतान को? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आपका जीवन आशीषमय हो, आनंदमय हो और आप आनंद का जीवन जिए। वह चाहता है कि आप कष्ट में रहें, और यही कारण है कि वह आपको लोभ देता है कुछ समय के लिए और उसके पश्चात आपको तकलीफ में डालता है। परंतु परमेश्वर आपके जीवन के विश्वास को बढ़ाता है, आपके प्रेम और आनंद को बढ़ाता है, ताकि आप उससे और अधिक प्यार करें। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको इन सारी बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। यहाँ पर अध्याय 4 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए इस पत्री के अंतिम अध्याय 5 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। इसमें हम देखेंगे प्रभु यीशु के कष्ट और पुनः आगमन। पत्रस की पहली पत्री के इस अंतिम अध्याय में प्रभु यीशु के कष्टों और उसके पुनः आगमन का प्रकाश डाला गया है। प्रभु यीशु के पुनः आगमन से हमारा क्या संबंध है? हम में से हर एक का मसीही जीवन प्रभु यीशु के क्रूस के कष्टों से आरंभ होता है, क्योंकि उसने हमारे पापों का दंड चुकाया था। परंतु परमेश्वर की संतान के जीवन में आज भी कष्ट आते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें कुशाग्र व्यक्तित्व देकर अपनी इच्छा के अनुसार बनाता है कि हमें काम में ले। मैंने इस अध्याय को दो भागों में विभाजित किया है, पद 1-4 जिसमें कष्टों से सेवा और आशा के उत्पन्न होने की चर्चा की गई है, और तब 5-14 जिसमें कष्टों द्वारा दीनता और धीरज की चर्चा की गई है। मेरे प्रियो, यहां प्रभु यीशु के कष्ट और आज पवित्र जनों के कष्ट तथा प्रभु यीशु का पुनः आगमन की चर्चा की गई है। प्रत्येक विश्वासी की योजना और कार्यसूची में प्रभु यीशु के पुनः आगमन का विचार समाहित होना चाहिए। हमें निर्देश दिए गए हैं कि हमारे पाए हुए जीवन की योजना बनी होनी चाहिए। क्या मसीह का पुनः आगमन, जब वह आकर आपको उठा ले जाएगा और आपको लेकर फिर पृथ्वी पर राज्य करने के लिए आएगा, आपकी भावी योजना में समाहित है? क्या आपने इसे रखा है, या यह एक अंतरिक्ष में तैरती आशा है जिसका आपके व्यवहारिक जीवन से कोई संबंध नहीं है? मेरे मित्रों, प्रभु का पुनः आगमन एक सिद्धांत ही नहीं है, यह हमारे जीवन की भीतरी सच्चाई है। यह एक ज्ञान या विश्वास की बात नहीं है, यह प्रभु यीशु के पुनः आगमन की सच्चाई है। मैं एक दिन इसे अवश्य देखूंगा, मैं उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति में होऊंगा। यह सच्ची आशीष का कैसा अनुपम अवसर होगा। पत्रस कहता है कि हमारे कष्ट इसी सच्चाई से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं, कष्टों से सेवा और आशा उत्पन्न होती है। पहला पत्रस 5:1 में लिखा है, तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं। यद्यपि पत्रस अपनी अधिकार प्रकट करता है, परंतु वह अपने आप को प्रेरित भी नहीं कहता है। वह कहता है कि वह एक प्राचीन है, तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान। इसका अर्थ यह हुआ कि वहां कुछ प्राचीन भी थे। मेरे प्रियो, यूनानी भाषा का यह शब्द कभी कभी वृद्ध मनुष्यों के लिए भी काम में लिया जाता था। यूनानी भाषा में बिशप शब्द का अर्थ है चरवाहा। पत्रस अपने आप को सहवृद्ध कहता है, उसने अपने भाइयों में बड़ा कभी नहीं कहा। वह अपने आप को उनका संगी वृद्ध कहकर आग्रह करता है। मसीह के दुखों का गवाह। पत्रस का स्थान अद्वितीय था, क्योंकि उसने प्रभु यीशु के कष्टों को अपनी आंखों से देखा था। वह कहता है, प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी। पत्रस ने महिमा को भी देखा था, अतः वह महिमा को रूपांतरण की घटना से जोड़ सकता था। उसने प्रभु को कलवरी पर प्राण त्यागते हुए भी देखा था। यह पर्वत उत्तर दिशा में था, और मेरे विचार में यह हर्मन पर्वत था, परंतु यहां भौगोलिक स्थिति का कोई महत्व नहीं है, महत्व है वहां की घटना का। पत्रस कहता है कि वह उसका गवाह है। भावी महिमा तो उससे भी अधिक होगी, जो होने वाली महिमा है। पहला पत्रस 5:2 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। पत्रस इस तथ्य पर बल देता है कि बिशप का पद संभालने वाला अपने झुंड का चरवाहा हो। चरवाहा होने का अर्थ है प्रबंध करना, प्रबंधकर्ता, सुरक्षा प्रदान करना, संचालन करना, अनुशासन बनाना, निर्देश देना और अगुवाई करना। अतः प्राचीन की सेवा अत्यधिक निश्चित हो, जिसमें संदेह का स्थान बिल्कुल भी ना हो। परंतु पत्रस एक नकारात्मक निर्देश भी देता है। सबसे पहले पत्रस कहता है कि प्राचीन सही कारण के निमित्त सेवा करे, उनकी मनोदशा भी उचित हो, बाध्य होकर नहीं परंतु स्वेच्छा से सेवा करें। क्या आपने ध्यान दिया कि वह कहता है, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जी हां, परमेश्वर को अनचाहे मन की सेवा पसंद नहीं है। कोई नहीं है तो मैं कर देता हूं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की सेवा ऐसे नहीं की जाती है। ऐसा कभी आप न करें। यदि आप दबाव में आकर के सेवा करें तो उसका कोई भी मूल्य नहीं है। पत्रस कहता है, नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। सेवा का कारण ही उचित न हो तो हमारी मनोदशा भी उचित होना है, क्योंकि जब तक हम सही मन से सेवा नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में आनंद नहीं होगा। कहता है, क्योंकि सेवा स्वेच्छा से की जाती है, परंतु सेवा की प्रेरणा भी उचित होना चाहिए। आपकी लालसा भौतिक लाभ की ना हो परंतु मन लगाकर परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करें। प्राचीन सेवा से संतुष्ट हो न कि उससे मिलने वाले लाभ से। मेरे प्रियो, यह बहुत दुख की बात है कि कई बार प्राचीन सेवा को कम परंतु अपनी भौतिकता लाभ को ज्यादा देखते हैं, और इसी कारण हम देखते हैं कि कलीसिया में कई बार फूट पड़ जाते हैं। यदि आप परमेश्वर की बुलाहट को नहीं समझ पाए हैं, उसकी सेवा के लिए आप आना नहीं चाहते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप दूसरा कुछ कार्य करें जिसमें आपको लाभ हो। यहां पर आप कुड़ कुड़ करके काम ना करें। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम सेवा से संतुष्ट हो ना कि उससे मिलने वाले लाभ के प्रति हम पीछे पीछे भागते रहें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार मैं अपने बेटे के साथ जा रहा था और हम भीड़ में फंस गए। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें इस भीड़ में एक भी मनुष्य प्रसन्न दिखाई देता है? वे सब तनावग्रस्त हैं और नौकरी पर जा रहे हैं जिसे वे पसंद नहीं करते। अधिकांश जन आज अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है। प्रभु की सेवा एक महान अवसर है जिसे आप करना ही नहीं चाहते। आप उससे लगाव नहीं रखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ही है जो आपको संतुष्ट कर सकता है, आपके जीवन में शांति और आनंद दे सकता है, आपके परिवार में शांति ला सकता है। आज परिवार बिखर रहे हैं, आज लोग तनाव में हैं, आज लोग चिंता में हैं। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के लिए कार्य नहीं करते हैं, उसके निकट आना नहीं चाहते हैं, परंतु चाहते हैं कि उनके जीवन में शांति, आनंद सब कुछ हो, जो कि संभव नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, अर्थात धन और परमेश्वर की सेवा आप नहीं कर सकते हैं। यदि आपको सेवा करना है तो एक को चुनना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर को चुनते हैं तो निश्चय ही जानिए कि परमेश्वर सबका दाता है। वह आपको न धन देगा परंतु वह आपके जीवन में शांति और आनंद भी देगा, और यही कारण है कि आज परमेश्वर अपने लोगों को ढूंढ रहा है जो उससे प्यार करते हैं और जो उसकी निकटता में आना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जानता कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको यही बताना चाहता है कि आज हम कहाँ हैं। क्या हम भी आज इस संसार की भीड़ में खोए हुए हैं? हम तनावग्रस्त हैं या हम अपने जीवन से परेशान हैं? क्या हम संतुष्ट हैं? आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही कहता है, और वह यह भी कहता है कि वह मुझसे और आपसे प्रेम करता है। वह चाहता है कि अपने मनों को फिराकर हम उसकी ओर आ जाएं, संसार के लिए नहीं परंतु उस परमेश्वर के प्रेम के लिए, क्योंकि आज वह आपसे अपनी सेवा लेना चाहता है। क्या आप अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए देने के लिए तैयार हैं? क्या उसके निकटता में आकर उसके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आप तैयार हैं? मेरे प्रियो, निर्णय आपको लेना है। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में एक सही निर्णय के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको सहायता करे और आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
कदमों में तेरे आए मसीहा, कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां। कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां। छोड़ के तेरी चौखट को यीशु, जाऊं तो जाऊं कहां, जाऊं तो जाऊं कहां। कदमों में तेरे आए मसीहा, कदमों में तेरे आए मसीहा, मिलता है जीवन जहां। खून की बूंदों से तूने मसीहा मेरी कहानी लिखी है, खून की बूंदों से तूने मसीहा मेरी कहानी लिखी है। जलती धूप से बचने को क्रूस से छाऊं कहां, क्रूस से छाऊं कहां। कदमों में तेरे आए मसीहा, कदमों